أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج کا درس سورہ البروج سے شروع ہوتا ہے، تیسواں پارہ، 81ویں سورت. یہ حقیقت اب آپ کے سامنے واضح طور پر آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس سلسلہ کائنات میں اور خود انسانوں کی اپنی دنیا میں ہر شے ایک قاعدے اور قانون کے مطابق طے ہوتی ہے. اس پوری کائنات میں لا اینڈ آرڈر کی کار فرمائی ہے، نہ تو یہاں کوئی شے یوں ہی اڈلٹپ بائی چانس واقعہ ہو جاتی ہے، اور نہ ہی یہاں خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کے یہ امر مطلق ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں کہ جب جی چاہا کچھ کہہ دیا، جب جی چاہا کچھ کر دیا. یہاں باہر کی دنیا کے اندر بھی قانون کی کار فرمائی ہے، اور اسی لیے انسانوں کی دنیا کے اندر بھی قانون ہی کی کار فرمائی ہونی چاہیے، اور انسان اپنے نظام کے اندر قانون کی کار فرمائی کو بروئے کار لائے یا نہ لائے، خدا کے قانون مقافات عمل کے مطابق انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ایک قانون کے مطابق مرتب ہوتا. یہ ہے اصل و بنیاد قرآن کریم کی تعلیم کی، اور یہی ہے وہ محور جس کے گرد اس کے ساری وہ داستانیں ہوں، اقوام کہن کی، وہ خارجی کائنات کے شواہد ہوں، انسان کی دنیا کے اخلاقی ضوابط ہوں، سیاسی معاشی یا معاشرتی نظام ہوں، وہ جس چیز کو بھی بیان کرتا ہے اس کا نقطۂ معاشقہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہر شے قانون کے اور ضابطے کے دائرے میں چلتی ہے، اس سے باہر نہیں جاتی. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے کہ نظام کائنات میں قانون کی کار فرمائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہ آسانی سے بھی آپ غور کیجئے تو ہمارے اس دور میں سمجھ میں آتی ہے جسے ہم سائنٹیفک ایج کہتے ہیں، اور یہ تو بڑی ریسنٹ چیز ہے، حال ہی کی چیز ہے. خود یورپ میں بھی یہ کچھ 17ویں صدی کی کہہ ہے، لیکن قرآن تو 6ویں صدی عیسوی کی باتیں کر رہا ہے. اس دور میں یہ چیز بات یہ باتیں کہی گئی تھی، تو آپ غور کیجئے کہ کس زمانے میں یہ چیزیں قرآن نے کہیں، اور دنیا کس طرح سے اپنی علمی ترقیوں کے ساتھ، انسان اپنے تجربات کے ساتھ، ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی صحیح، کس طرح رفتہ رفتہ بتدریج اس حقیقت تک آتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں کار فرمائی قانون کی ہے، یہاں کوئی شے بھی یوں ہی ہنگامی طور پر وجود میں نہیں آ جاتی. خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی کے لیے عربوں جیسی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ ستاروں کو سامنے لایا کرتا ہے، ان سے دلیل دیا کرتا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی تھی. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عرب صحرا نورد قوم تھی، शहरों और बस्तियों में बहुत कम आबादी थी, जंगलों और रेगिस्तानों में वो चलते रहते थे। हर सुबह सफर, हर शाम सफर, बल्कि सुबह को तो बहुत कम सफर उनका होता था कि सूरज की गर्मी तमाजत रेगिस्तान उन्हें इजाजत ही नहीं देता था कि दिन के वक्त वो सफर करें। रातों को सफर करना, रातों का सफर भी कोई जीटी रोड के ऊपर नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक एक पक्की सड़क लगी बनी चली जा रही है। रेगिस्तानों में सफर कि जहाँ की कैफियत ये है कि कोई सड़क नहीं, कोई शाहराह नहीं, कोई पगडंडी नहीं, रास्ते के निशानात भी नहीं होते थे। निशानात की ये कैफियत कि अगर सुबह के वक्त कहीं रेत का टीला है तो दोपहर के वक्त वहाँ देखिए तो चटियल मैदान होगा, वो टीला यहाँ से कहीं और पहुँच चुका होता। कोई निशान राह नहीं, कोई रास्ता मुतय्यन नहीं। रात की तारीखियों में वो सफर करते हैं और कभी ऐसा नहीं होता था कि वो भूल जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता था यूं कहिए कि वो भूल जाते हों। तो उनसे ही पूछा जाता था कि ये क्या चीज है जिसकी बना पर तुम इस तरह से अपने सफर में मुतय्यन रास्तों पे चलते थे। तो उनके लिए एक ही हादी तरीकत, एक ही रहनुमा होता था और वो रहनुमाई होती थी सितारों की। वो लोग इन सितारों से अपने रास्तों को मुतय्यन करते थे और इसीलिए सितारों के मुतल्लक वो कहते थे कि ये कभी धोखा नहीं देते। तो उनसे कहा यह जाता था कि आप सोचो तो सही कि अगर इस कायनात में यूं ही जो कुछ हो रहा है हंगामी तौर पर ही होता हो, कायदे और कानून के ताबे न होता हो, तो ये सितारे तुम्हें हमेशा सही रहनुमाई किस तरह से कर सकते हैं? क्या तुम इसी से नहीं समझते कि यहाँ कार फरमाई कानून की है? ये ऐसी मोहकम दलील थी, उनकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाती थी। और आज हमारे यहाँ इल्मुल अफलाक के बुलंद तरीन माहरीन की समझ में भी यही बात आ जाती है जब उनसे ये कहा जाए कि इन सितारों और सैयारों की दुनिया पे गौर करो, किस तरह अजीम शान कानून की जंजीरों में ये जकड़े हुए हैं। एक ही दलील है जो 1300 साल पहले के बादी नसीन अरब को भी मुतमईन कर देती है और आज के सर जेम्स डीन को भी मुतमईन कर सकती है। ये है कुरान करीम का वो अंदाज़े बयान, वो दलायल और शवाहद लाने का तरीक कि जिससे वो एक ऊंट चराने वाले को और एक आसमान पे उड़ने वाले को दोनों को एक दलील से मुतमईन कर देता है। और इसी से उसने आगाज किया इस सूरत का के वक्त समाए जातिल बरूद ये बुलंदियां, फजा की ये बुलंदियां, ये तो हुआ समा, ये साहिब है और समाज के जो जात बुरूज है जिसमें बुरूज है, बुरूज बुर्ज की जमा है। आपने ये सुना होगा कि ये आसमान में 12 बुर्ज होते हैं। अब तो वो जंतरियां हमारे यहाँ बहुत कम हो गई हैं, इससे पहले वो आम हुआ करती थी, शायद अब भी ज्यादा आवाम में वो चलती हो। उनमें बुर्ज दिए हुए होते थे आसमानों के और वो होता था कि सूरज अल फलां बुर्ज में दाखिल हो गया, बुर्ज जहल में और बुर्ज अदारज में, और उससे फिर अजीब किस्म की साले लेते थे। ये कदीम इल्मुल अफलाक में 12 बुर्ज गिने जाते थे, लेकिन अरब इनसे वाकिफ नहीं थे। ये तो कौन ही अजीब थी, तहजीब व तमद्दन की कोई किरण यहाँ आई नहीं थी। बिल्कुल फितरत के खतूत पर ये जिंदगी बसर किया करते थे। इसलिए यहाँ ये जो बरूज कहा है तो ये वो 12 बुरूज नहीं हो सकते जो यूनानियों के यहाँ इल्मुल अफलाक में थे। यहाँ तो ये बड़े सादे मानों में ये बात इस्तेमाल हुई है, बरूज बुरूज जिनमें तौर पे यहाँ फिर अरबी जुबान और अरबों के हाँ इस जुबान में जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो फिर बात बाहर सामने आ जाती है। मैंने अर्ज किया था कि अरब हजारहा साल तक वो एक ही काम में लगे रहे और वो था इस जुबान को, अरबी जुबान को इस तरह से शाइस्ता, इस तरह से आरास्ता पैरास्ता अमीर बुलंद बनाते चले जाना कि ये कुरान जैसे हकायक की मुतहम्मिल हो सके। मैं समझता हूँ ये फितरत का बड़ा अजीम प्रोग्राम था, कोई और जुबान इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी और हो सकती थी क्या कहा जाए, आज भी नहीं हो सकती। आज भी ये कैफियत है कि दुनिया की जुबानें बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, लेकिन मुझसे नहीं, खुद यूरोप के जो बड़े बड़े जुबानदान हैं उनसे सुनिए। जिब लिखता है द मॉडर्न ट्रेंड इन इस्लाम में कि कुरान करीम का तर्जुमा दुनिया की किसी जुबान में हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ी चीज। उसने अपने हाथ के तर्जुमा करने वालों से कहा है, हालांकि उनकी अंग्रेजी जुबान, फिर उस अंग्रेजी जुबान में वो इतने इतने बड़े वो माहिरीन थे, अरबी भी जानते थे, अंग्रेजी भी इसके की भी असातिज़ा थे, रागल जैसे तेल जैसे, उसने उनको झटक के रख दिया है। उसने कहा है कि ये समझ ही नहीं सके कि कुरान है क्या जो ये तर्जुमा करने के लिए बैठ गई थी। कोई दूसरी जुबान इन अल्फाज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, वो कहता है। जुबान के एतबार से मैं बात कर रहा था, यही बुर्ज। आपको मालूम है कि एक तो इस जुबान में हर लफ्ज का एक मादा होता है, एक रूट होता है और उसमें एक माना होता है और फिर उस रूप से इसके ऊपर ऊपर तक इमारत उठती चली जाती है, इसके अल्फाज बनते चले जाते हैं कायदे के मुताबिक, और वो जो बुनियादी माने होते हैं वो हर लफ्ज के अंदर उसकी झलक पाई जाती है। एक तो ये बात, इतनी ही नहीं, इनके यहाँ तो इससे और आगे बात चली गई है। मसलन जिस मादे के अंदर जीम दे और रे के हरूफ आ जाए, जिस लफ्ज के अंदर भी ये हरूफ आ जाए उसमें शिद्दत और कुव्वत के माने हों, यानी वो बे रे जीम हो, रे बे जीम हो, रे जीम दे हो, यानी ये तीन जो है ये अगर किसी लफ्ज के अंदर ये आ जाए तो उसमें शिद्दत और कुव्वत का मफहूम होगा, और अगर इनमें दे और रे इकट्ठे आ जाए तो उसमें इजहार का मफहूम होगा, किसी चीज की नमूद का मफहूम होगा। तो जीम दे और रे अगर ये इकट्ठा यूं आता है तो शिद्दत और कुव्वत और इजहार तीनों आएंगे। कोई लफ्ज अरबी जुबान का जिसमें ये चीज यूं आ जाएगी उसमें ये मफहूम पाया जाएगा। इस जुबान है, ये थी वो जुबान जिसके अंदर ये कुरान नाजिल हुआ था, वो ही इसीलिए सब तक। मैं ये बात बुरुज से कह रहा था, बुरुज के माने शिद्दत कुव्वत उभार नमूद इजहार, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं। इन सितारों के लिए छठी सदी ईस्वी में जबकि ये ज्यादा से ज्यादा टिमटिमाते हुए चिराग नजर आते थे, इससे ज्यादा किसी को इल्म नहीं था कि ये क्या है। इनके मुतल्लिक ये कहना कि इनमें उभार पैदा हुआ है, ये उभरी हुई चीजें हैं जिनमें शिद्दत है, कुव्वत है, नमूद है, उभार है। प्लैनेट का तसव्वुर ही नहीं उस जमाने में आ सकता था, ये कुरान ने पहली दफा तसव्वुर दिया है अपने यहाँ इन प्लैनेट के मुतल्लक। ये पहली चीज तो ये कि ये उभरी हुई कुछ चीजें, दूसरी चीज ये कि ये फजा की तहनाइयों के अंदर तैर रही हैं, तीसरी चीज ये कि ये अपने अपने दायरों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, چوتھی چیز یہ کہ یہ ذات الرجع ہیں جن کی گردشیں دوہری ہیں، اپنے ایکشن کے اوپر بھی گردش کرتے ہیں کہ اس پہلو بدل بدل کے تمہارے سامنے آتے ہیں، اور اس طلاع سے لیل و نہار بھی ان سے پیدا ہوتے ہیں. چھٹی صدی عیسوی میں زمین کی باتیں تو ایک طرف رہا، آسمان کی باتیں کرنے والا یقیناً اس ماحول کا انسان تو نہیں ہو سکتا. اور یہی چیز ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا سرچشمہ، اس علم کا، انسانی علم، انسانی ماحول اور اس کے تاثرات نہیں تھے. بس سمائے ذات البروج، یہ بلندیاں کہ جن کے اندر یہ ابھرے ہوئے ظاہر ہونے والے قوت اور شدت کے حامل اتنے اتنے بڑے یہ سیارگان تیرتے پھر رہے ہیں، ان سے کہا کہ یہ ایک حقیقت پر شاہد ہے. وہاں کی دلیل لائی جا رہی ہے، وہ حقیقت کون سی ہے جس کے اوپر یہ شاہد ہیں؟ والیوم الموعود، وہ انقلاب جو انسانی دنیا کے اندر، جس کے متعلق وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی دنیا کے اندر وہ انقلاب آ کر رہے گا، یہ اس کی شہادت دے رہے ہیں. اب دونوں میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ قدر مشترک ان دونوں میں کیا ہے؟ آسمان کی فضاؤں کے اندر یہ ستارے، انسانوں کی دنیا کے اندر کا انقلاب، قدر مشترک ان کے اندر ہے قانون، وہ بھی ایک لگے بندے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہیں. انسانی زندگی کے اندر بھی ایک قانون کی کار فرمائی ہے، اور قانون وہی ہے کہ جب کبھی کوئی کام یوں کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اسی کو قانون کہتے ہیں. یہی یوم موعود ہے قرآن کے ہاں، کہ انسانی زندگی کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے وہ، اور اس انقلاب کے متعلق کہا کہ وہ شاہد و مشہود. شاہد یہ خود رسول جو اس کی شہادت دے رہا ہے تمہارے سامنے کہ ایسا ہو کر رہے گا. مشہود وہ خود ہونے والا واقعہ کہ جو ایسا ہو کر رہے گا. یہ تمام چیزیں کس بات کی شہادت دیتی ہیں؟ شہادت دیتی ہیں اس بات کی کہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عام تفسیریں جو ہمارے ہاں آئیں، وہ یہ کہ خندقوں والے جو اس میں آگ جلاتے تھے ہلاک ہو گئے. پھر اس کے متعلق ہماری تفاسیر میں مختلف چیزیں آئیں، کہیں یہ کہا گیا کہ یمن میں یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اس نے عیسائیوں کو قتل کیا، پھر ان کو خندقوں میں جلا دیا. تو یہ عیسائیوں کے متعلق ہوئی، اور دوسری جگہ تفسیروں میں ہے کہ نہیں، یہ بخت نصر کا واقعہ ہے کہ جس نے یہودیوں کو اس طرح سے جلایا تھا. بہرحال یہ ان کے خیالات تھے، لیکن قرآن کی چار ہی آیتیں آگے ہم چل کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی گزرے ہوئے واقعے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے. جو ہر دور میں سامنے آئے گی، بات ہو رہی ہے حق اور باطل کی کشمکش کی، بات ہو رہی ہے اس تصادم کی. وہ انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رفقاء کی جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لا رہے تھے، اس کی مخالفت ہو رہی تھی مفاد پرستوں کی طرف. یہ ٹکراؤ ہے، یہ تصادم ہے، اور اس تصادم نے آخر میں جنگ کی شکل اختیار کرنی ہے. اور جنگ کی محیط ترین شکل یہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں، اس میں آگ جلائی جائے. اس زمانے میں حفاظت کے لیے بہترین یہی چیز ہوتی تھی کہ خندقیں کھودی جائیں، اس کے اندر آگ جلا دی جائے، اس میں حفاظت کا سامان پیدا کر دیا جائے. یہ جنگ کی محیط ترین شکل تھی. کہا گیا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اب اس آنے والے انقلاب کو، ان دائیان کو، इस तरह से जंग के मैदान में जाकर इनका मुकाबला करके इनको खत्म कर दिया जाए, कहां से ये कानून निजामे कायनात का। कानून ये है कि यहां कोई तकरीबी कुव्वत कभी कामयाब नहीं हो सकती, हमेशा तावीरी कुव्वतें कामयाब होंगी। हक कहते ही तावीरी कुव्वत को है, बातिल कहते ही तकरीबी कुव्वत को है। कहा कि यहां जो तसादम हो रहा है उस तसादम में भी ये कानून कार फरमा है कि तावीरी कुव्वतें कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज हमेशा गालिब आकर रहेंगी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज के ऊपर, तकरीबी कुव्वतों के ऊपर। लिहाजा ये लोग जो जाती मफाद परस्तियों के अपने निजाम सरमायादारी की हिफाजत में उसके खड़े होंगे, वो खुदा के निजाम रबूबियत को जो पूरी नौ इंसानी की नस्ल नमा की जिम्मेदारी देने के लिए उठ खड़ा हुआ है, ये उसको कभी शिकस्त नहीं दे सकते। कितनी बड़ी जंगी तैयारियां क्यों ना कर लें, खंडकें खोद लें, आग भड़का दें उसके अंदर, लेकिन कोते ना तबाह यही होंगे, ये निजाम तबाह नहीं हो सकता। इज हम अलैहा क़ऊदन ये करते हैं और फिर उस पर बैठ कर देखते रहते हैं अपनी तदबीरों को कि किस तरह से ये कार फरमा होती हैं, किस तरह से ये कामयाब होती हैं। ये खुद करते हैं वह हम अला मा यफ़अलून बिल मोमिनीन शहूद। मैंने कहा था ना कि अगली ही आयत में बात साफ हो जाती है कि ये किसके मुतल्लिक कहा गया है। कहा कि ये कुछ खुद करते हैं और दूसरे लोग भी जो मोमिनीन के खिलाफ कुछ करते हैं तो उसको भी तमाशा समझ के बैठ के देखते रहते हैं। खुद भी इस इनकलाब के खिलाफ ये कार्रवाइयां करते हैं और जो दूसरे लोग इसके खिलाफ कुछ करते हैं तो उसको भी तमाशबीन की हैसियत से ये बैठे हुए देखते रहते हैं। खुश होते हैं जी में कि इनकी बड़ी मुखालफत हो रही है, अब देखिए इनके ऊपर तबाही आई, अब ये हलाक हुए। وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہا کہ یہ ان سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں؟ کتنی بڑی جنگی تیاریاں، ان کی تباہیوں کے اوپر اتنی خوشیاں منانا، کہا کہ یہ انتقام ان سے کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ صرف اس بات کا کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ ये है वो बहुत बड़ा जुर्म जिसकी बिना पर ये सारी तबाहियां बर्बादियां इनके लिए लाई जा रही हैं, उसकी तमन्नाएं की जा रही हैं कि ये खुदा पर ईमान क्यों रखते हैं। बात तो इतनी क्या नहीं कि खुदा पर ईमान क्यों रखते हैं, लेकिन ये तो कुरान है, खुदा की दो सिफतें यहां बयान की और उन दो सिफतों के अंदर पूरा निजाम जो था जिसके लिए ये लोग लड़ रहे थे वो बयान कर दिया। अजीज और हमीद, अजीज गलबे और कुव्वत का मालिक, गलबे और कुव्वत का मालिक तो चंगेज और हिलाकू भी होता है, वो तो दुनिया का हर मुस्तमद काहिर बादशाह भी हो सकता है, लेकिन खुदा सिर्फ अजीज नहीं, वो ऐसा अजीज है जो हमीद है साथ, उसका गलबा और कुव्वत इसलिए है कि दुनिया में जितनी भी मुस्तबिद कुव्वतें हों उन पर वो गालिब आए ताकि सारी दुनिया की जुबान से उसकी हमदो सलाह के जम्स में बुलंद होने लगे। साहिब कुव्वत की तारीफ में कोई कसीदा नहीं पड़ता, लेकिन एक कुव्वत दुनिया में ऐसी भी होती है कि जब उसका इजहार होता है तो उसके बाद दुनिया का हर मजलूम और मकहूर उसके हक में दुआएं दे रहा होता है। खुदा का गलबा हमीद का गलबा है, इससे नजर आया कि वो मजलूम को सताने के लिए नहीं है, जालिम की कलाई को मोड़ने के लिए है कि हर मजलूम के जुबान से उसके लिए तासीन और आफरीन के कलमात बुलंद हों। और खुदा का निजाम भी दुनिया के अंदर जब कायम होगा उसकी खसूसियत ये होगी कि वो उन गलबों का मालिक होगा कि जिन गलबों के नतायज में मजलूम इंसानों की दुआएं जुबानों से उसके लिए दुआएं निकले, उसे अजीज और हमीद होना चाहिए। आपने देखा कि मैंने कहा करता हूं कि खुदा की जो सिफात आए जिन आयात में उनसे यूं ही आगे ना गुजर जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यहां खासतौर पर यही सिफात क्यों बयान हुई है। सिफात तो उसकी अस्माउल हुस्ना बहुत सी है, لیکن موضوع اور عنوان کے اعتبار سے خاص وہاں صفات وہی آئیں گی جن کا ذکر کیا جانا مقصود ہوتا ہے. عزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض, غلبے کا یہ عالم کہ اس تمام کائنات میں اسی سے قانون کی کار فرمائی. ملک السماوات, کبریائی, اقتدار, سورنٹی, یہی ہے جو اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے. اسی کا نام قانون کی کار فرمائی ہے کہ جس سے بلند کوئی اور قانون نہ ہو, کائنات میں اسی کا قانون کار فرما ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ ذات البروج سے بات جو شروع ہوئی تھی کہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, اور ہر شے کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا, کوئی شے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں, اور ساری کائنات میں کار فرمائی اور اقتدار اعلیٰ اسی کے قانون کا ہے. یہ وہ خدا کہہ رہا ہے جس کی کار فرمائی کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ جو اس حق کے نظام کی مخالفت میں اس طرح سے کمر بستہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, بالآخر ہلاک ہو کر رہیں گے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. دیکھیے یہاں بات صاف ہو گئی, یہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں, اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اب اس پر بھی اپنی روش سے باز نہیں آتے. انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی یہ بے محابہ قوتیں انہیں تباہی سے بچا نہیں سکتی. اس کے بعد تباہی آئے گی, بربادی آئے گی, اور وہ اس قسم کی تباہی اور بربادی ہوگی کہ ان کے سارے ساز و سامان حیات کو جلا کر دھلسا کر راکھ بنا کر رکھ دے گی. یہ عذاب کے لفظ سے ہمارا ذہن پھر وہی مذہب کے تصور کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے, مبہم سی چیز ہے, کسی طرح سے یہ آتی ہے. یہ چیز نہیں ہے جسے آپ تباہی اور بربادی کہتے ہیں, جسے آپ غلط نظام کے نقصان رساں تباہ کن نتائج کہتے ہیں, اسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ان کی اس روش کا فطری نتیجہ ان کے حق میں تباہی اور بربادی, اور ایسا ہو کے رہے گا. یہ تو ایک نیگیٹو پہلو ہے, یہ تو منفی پہلو ہے جو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اگر ان کی قسمت بگڑ جائے بھی ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچا. لیکن دوسری طرف یہ جماعت ہے کہ یہ جو تعمیری کام کر رہی ہے, یاد رکھیے ایک تباہی وہ ہے کہ جو فطرت کے قانون کے مطابق ان کے اوپر تو آتی ہے, اگر مقابلے میں دوسری قوم ایسی نہیں ہے کہ جو تعمیری قوتوں کی حامل ہے اور تعمیری نظام قائم کرنا چاہتی ہے, ان کی تباہی سے انہیں نہیں کچھ فائدہ پہنچ سکتا. لیکن اگر ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم ہے جو خود مثبت اور تعمیری نظام کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے, تو ان کی تباہی ان کی کامرانی کا باعث بن جاتی ہے. اسی لیے جہاں یہ کہا کہ ان کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہوگی, اس کے مقابلے میں کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو ان صداقتوں کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اپنی ذات بھی سنور جائے اور یہ حسن کائنات بھی نکھرتا سنورتا چلا جائے, ان کی کیفیت یہ ہوگی, ان کو اس دنیا کے اندر بھی اس قسم کا معاشرہ ملے گا کہ جس کی شادابیوں اور گفتگیوں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی. اور یہ چیز ذالک الفوز القدیم. اب تو آپ کو یہ معلوم ہے نا, میرا خیال ہے دو ہی درس پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے مذاہب میں منتہائے مقصود سیلویشن یا نجات ہوتا ہے, اور اس کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی انسان کی. نجات یا سیلویشن کے معنی یہ ہیں کہ جس مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے उस मुसीबत से उसे रहाई मिल जाए। नजात के तसव्वुर में पहले ये चीज प्री रिक्विजिट है, पहले ये तस्लीम करना पड़ता है कि इंसान एक मुसीबत में मुब्तला है इस दुनिया के अंदर जो भेजा गया है। पहले उसे इस जेल खाने के अंदर फेंक दिया गया, डाल दिया गया, अब उसके बाद उसकी सारी कद्दोकावित ये है कि किसी तरह से इस मुसीबत से वो निजात हासिल कर ले। कुरान का तसव्वुर ये नहीं है। कुरान तामीरी चीजें देता है, वो इंसान के लिए पॉजिटिव अचीवमेंट कहता है, उसमें इंसान ने कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए कुरान करीम जो महसल बयान करता है ईमान और अमाले सालिया का, उसे फौज से तारीफ करता है, अचीवमेंट से तारीफ करता है। एक तामीरी सामान्य हयात हासिल होता है उसको, वो निजात नहीं पाता, छुटकारा नहीं किसी अजाब से पाता, आगे बढ़ने के लिए सामान हयात उसको मिल जाता है। और फौज भी है फौजुल कबीर कि जो उसके अंदर किबरियाई की सिफत खुदाबंदी हज्ज बशरियत के अंदर पैदा करती चली जाए, और फिर कबीर जिस वजन के ऊपर है अरबी जुबान में, वो ये कि हंगामी तौर पे ऐसा ना हो बल्कि ये चीज होती चली जाए, मुतवातर होती चली जाए, इंतजामन ऐसी होती चली जाए। उसमें याद रखिए मजहब की दुनिया के अंदर तो तकब्बुर तो शैतान का काम है, यहाँ तो किसी के लिए किबरियाई बड़ाई ये चीज तो बहुत बुरी मायूब समझी जाती है ना सर, लेकिन दीन की दुनिया में ये चीज नहीं है। वहाँ पस्ती और जिल्लत बड़ी मायूस समझी जाती है, रिफत और बुलंदी और किबरियाई और बड़ाई जो है ये तो शर्त इंसानियत है। खुदा की खुद एक सिफत अनमुतकब्बर है, वो इंसान के अंदर इस सिफत को पैदा करना चाहता है। जिल्लत और पस्ती जो है ये मनाफी है इंसान की जात की, शर्त इंसानियत जो है उसमें इफत और किबरियाई आनी चाहिए, इसमें तुव्वत आनी चाहिए, बुलंदी आनी चाहिए। इसीलिए उसने कहा है कि इसका नतीजा फौजुल कबीर है, एक ऐसी अचीवमेंट है कि जिसमें इसके अंदर बुलंद होने की, बड़ा होने की ये सिफत पाई जाए। ये ठीक है कि अल अकबर तो खुदा की जात है, बुलंदियों की इंतहा पर के जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन उससे नीचे खुदा की ये सिफात इंसानों के अंदर भी बशरियत की हद के अंदर रहते हुए यही सिफात खुदाबंदी इंसानों के अंदर भी सरकती हैं। पस्तियां और जिल्लतें मोमिन का शर्त नहीं है। मोमिन वही है कि जिसकी जात के अंदर किबरियाई और रिफत और बुलंदियां और अजमतें झलक रही हों, यह है मोमिन की सिफत। ये इसकी किबरियाई फिर कह दूं कमजोरों और मजलूमों को दबाने के लिए नहीं होगी, मुस्तबिद और जालिम के जुल्म को रोकने के लिए होगी। इसीलिए इसकी किबरियाई जो है महमूद है, सैतनत का तकब्बुर जो है वो वाकई मजमून है। तकब्बुर बजाय खेस मजमून चीज नहीं है। तकब्बुर या बड़ा होना जो है इस किबरियाई का जो इस्तेमाल है उससे ये चीज मुतय्यन होगी कि ये मजमूम है या महमूद है। अगर किसी की बड़ाई जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया है मजलूम और नातवान को दबाने के लिए होगी तो वो वाकई सतनत है। अगर वो जालिम की कलाई मरोड़ने के लिए होगी तो ये बड़ी महमूद है दुनिया के अंदर। यहीं से ये बात बताई कि इनको भी ये बड़ाई हासिल होगी, इनके मुकाबले में ये लोग जो मुखालफत के लिए उभरे हैं उनसे कह देना चाहिए अजीम आए थे इन्ना बच्चा रब्बे का लशदी, इनसे कह दो कि तुम्हारे खुदा के कानून मकाफात की गिरफ्त बड़ी सख्त हुआ करती है, बड़ी सख्त गिरफ्त होती है। अब आप देखते हैं कि वही खुदा जो रहीम और रहमान और मन्नान और रऊफ है وہی جو الغفور اور ودود ہے, ابھی آتا ہے یہ لفظ, وہی خدا ہے, اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اتنا بدتر ربے کا لشدید, صفات لاپ سائڈ ہونی نہیں چاہیے, ایک ہی طرف کو نکل جانے والی. اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ قرآن کریم نے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی صفت خداوندی میں بھی ایک طرف کو نکل جاتے ہیں, جسے الحاد کہا جاتا ہے, کہا وزر اللہ بھی نظر ہونا سی اسما, ان سے کنارہ کش ہو جاؤ, ان کو چھوڑ دو. یعنی یہ چیز جو ایک ہی طرف ایکسٹریم کی طرف نکل جانا ہے, خواہ وہ صفت خداوندی کیوں نہ ہو, قرآن اس کو بھی مضمون قرار دیتا ہے. وہ تو یہ تو ڈالتا نہ کرتا ہے, صرف مرضی آپ کے یہاں اگر آ جائے گی تو عدل کا تصور ختم ہو جائے گا. خود عیسائیت کے مورف یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2000 سال میں دنیا نے جس قدر ظلم اور استبداد کو بد لگام کیا ہے, عیسائیت کے رحم کے تصور نے بد لگام کیا ہے. لیکن دوسری طرف اگر جلی ہوئی انگلی کے لیے مرہم نہ دی جائے, یہ بھی کچھ زیادتی, یہ ہے یہودیت کا تصور, یہ ہے ہندوؤں کا تصور کہ ان کے ہاں عدل ہی عدل ہے, اس کا مداوع نہیں, اس میں توبہ نہیں, اس میں باز آفرینی نہیں, واپس لوٹنا نہیں ہے. قرآن کا تصور یہ ہے کہ اگر غلطی سے غلط قدم اٹھ جاتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے انسان واپس آ سکتا ہے, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, اور یہی وہ تلافی کا امکان ہے, یہی اس کو یہ اپرچونٹی دینا ہے کہ جسے خدا کی مرضی یا رحم کیا کہا جاتا ہے. انما اچھا ربے کا لشدید, اس کی گرفت بڑی سخت اور بڑی محکم ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شہر اس کو ایبسلیوٹ نہیں لینا چاہیے, کہ گرفت ہی گرفت ہونی چاہیے. گرفت اور گرفت کے اندر بھی فرق ہے. یہاں بد کے ربے کا کہا ہے کہ یہ تو بڑی قابل تعریف بد چیز ہے, گرفت ہوئی وہ قوم عاد و ثمود کے متعلق, دنیا کی جبارین قومیں جو تھیں, مستبد قومیں جو تھیں, ان کے متعلق قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے, سورہ شعراء میں غالباً, وائزا بتش تم بتش تم جب باری, وہی لفظ بتش ہے. ان سے کہا گیا کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو اس طرح سے پکڑتے ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہو, یعنی یہ ان کے خلاف جرم قرار دیا گیا. تو ایک تو بت یا گرفت ہے, ایک جابر مستبد کی, کہ جو محض ظلم توڑنے کے لیے دوسرے کی گرفت کرتا اور ہڈیاں توڑتا ہے, اور ایک بت جو ہے تمہارے خدا کی, کہ جو مظلوم کی مدافعت کے لیے ظالم کی کلائی مروڑتا ہے. یہ ہے فرق ان چیزوں میں. قوت بجائے خیز نہ محمود ہے نہ مظلوم ہے. سوال یہ ہے کہ آپ قوت کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. اتنا بات کر ربے کا لشدید, اور اسی کا نتیجہ یہ ہے, کہاں سے بات شروع کرتا ہے قرآن, کہاں لے جاتا ہے, کہ انہو ہوا یبدئ ویعید. دو لفظوں میں یہ سارا نظام تخلیق کائنات اس میں آ گیا. لفظی معنی تو وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے, جو عید کے معنی دو لفظوں میں نہیں بیان میں کر سکتا کہ جامع لفظ, میں بھی عرض کرتا ہوں. بدا تو یہ ہے ابتدا کرنا, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی عقل حیرت میں رہ جاتی ہے, آگے بڑھ نہیں سکتی. یہ سلسلہ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آ گیا, نتھنگ نیس سے یہ شے وجود میں کیسے آ گیا, کچھ نہیں تھا تو یہ کیسے بن گیا. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس میں انسانیت کی پوری تاریخ میں انسان کو ورطۂ حیرت میں گم رکھا ہے. جس طرح سے پہلے دن کا انسان حیرت کے مقام میں تھا, اسی طرح آج کا انسان بھی حیرت کے مقام میں ہے, اور آخری انسان بھی حیرت ہی کے مقام میں ہوگا. کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو گئی, یہ وجود میں کیسے آ گیا. میٹیریلسٹ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب کسی طرح سے یہ وجود میں آ گیا. خدا پر ایمان لانے والے نے یہ کہا کہ خدا نے اس کو عدم, خدا اس کو عدم سے وجود میں لے آیا. یہاں سے تو کچھ فرق ہوتا ہے لیکن آگے چلیے تو یہ فرق پھر وہیں مل جاتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پھر یہ خدا کہاں سے آ گیا. یہاں اس کو بھی کھڑا ہو جانا پڑتا ہے, یہ مقام ہے ہی نہیں عقل کے بس کی بات نہیں. وہ اس لیے کہ عقل انسانی محدود ہے اور یہ شے جو ہے یہ نامحدود تک پہنچ جاتی ہے, اس لیے یہ شے, یہ حقیقت, یہ نقطہ اس کے بس کی بات ہے نہیں کہ اگر یہ اب خود وجود میں آ گیا تو کیسے آ گیا. کبھی اب خود بھی کوئی شے وجود میں آیا کرتی ہے, وہ تو کوئی خالق پیدا کرنے والا ہوگا جو وہ پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے جب ان کے مقابلے میں یہ دلیل دے کہ ہم خالق تک پہنچے تو ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ صاحب پھر خالق کیسے وجود میں آ گیا. اس کا جواب ہم بھی نہیں دے سکتے, عقل انسانی نہیں دے سکتی. یہاں تو ماننا ہی پڑتا ہے, کسی ایسے خالق کو ماننا پڑتا ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو. بات دوسری طرف نکل جائے گی, ورنہ میں عرض کرتا کہ یہ دونوں جو نظریے ہیں کہ از خود وجود میں آ گیا وعدہ یا یہ کہ خدا از خود موجود تھا, ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے اور اس فرق سے خود انسان کے اعمال پہ کتنا اثر پڑتا ہے, یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. اتنے سے وقت میں یہ بات بیان نہیں کر سکتا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ انہ ہوا یوگ گیو فاطر السماوات والارض بدیع السماوات والارض, اوریجنیٹر جسے آپ کہتے ہیں, اوریجن وہ اس سے کرنے والا, ابتدا وہ ہے جو اس نے کی. اب یہ ابتدا کرنے کے بعد اگلا نظریہ یہ تھا کہ کیا ہر شے جس طرح سے آج موجود ہے اسی طرح سے ابتدا میں وجود میں آ گئی تھی. انسان کا ذہن کچھ یوں مانتا چلا آ رہا تھا کہ ہمارے اس دور میں آ کر یہ چیز کام میں آئی کہ نہیں. اشیاء کی ابتدا تو بہت ہی پست حالت سے, حقیر سی حالت میں, ابتدائی حالت میں وجود میں آتی ہے. اس کے بعد اب یہ آپ کے ہاں کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جنہوں نے اس سے پہنچایا کہ ہر شے کو مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے, گردشیں کرتے ہوئے یہ مختلف مراحل اور منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی اس حد تک پہنچتی ہے جس میں آج ہمیں وہ نظر آ رہی ہے. یہ آپ کا 18th century میں صرف اس کی ابتدا ہوئی اس نظریے کی, کہ دنیا میں جو شے وجود میں آتی ہے ابتدا وہ اس کی شہد کچھ بالکل مختلف ہوتی ہے اور پھر وہ گردشیں کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی چلی آتی ہے تا آگے وہ کسی ایک مقام پہ جسے اس کا نقطۂ تکمیل کے لیے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے, عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہے آدھا جسے کہتے ہیں, این واو دال فوج کر کے آنا, لوئید کے معنی پلٹنا لوٹنا جس کے عام معنی کیے جاتے ہیں, صرف اتنے معنی نہیں ہے زبان کے اعتبار سے. اس میں اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا کسی چیز کو اور گردشیں دیتے ہوئے اس کے معاد تک پہنچا دینا کہ جس کے بعد مزید گردش اس میں نہ آئے, جسے اس کا مقام تکمیل کہیں گے, جسے اس کی ڈیسٹنی کہیں گے آپ. ایک لفظ میں میں پتا ہی یہ کون کیا تھی, میں تو حیران رہ جاتا ہوں صرف ان کی زبان دیکھتا, ورنہ یہ لفظ جو تھا اس کے بنیادی معنی ہی تھا بار بار آنا, لوٹ کر آنا. لیکن ان کے ہاں لوٹ کر آنا, بار بار آنا, گردشیں دینا اور اس کے بعد یہیں سے لفظ وہ معاد کے جہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچے اور پھر اس میں گردش پیدا نہ ہو, अब इसमें लामुतनाहियत जो है, इटर्निटी जो है अशिया के लिए, उसका तसव्वुर भी खत्म हो गया। वरना ये एक और मुश्किल हो जाती कि जहाँ इब्तदा मालूम नहीं थी आपकी, कहाँ से ये होगी मटीरियलिस्ट, तो उसको इटर्निटी में ले जाता है पीछे की तरफ अजल से, कि वो थी इसी तरह से, और उसके बाद उसको मानना पड़ता है कि अब तक इसी तरह से रहेगी। कुरान की रूह से ये सिर्फ और सिर्फ खुदा किया हुवल अव्वल वल आखिर, जिसे आप इब्तदा और इंतहा कहते हैं वो सिर्फ उसके लिए है, किसी मखलूक शय के लिए ये चीज नहीं है। उसने ओरिजिन में आना है और उसके बाद उसकी इंतहा भी है। ये जुबान का ये इजाज है कि एक लफ्ज उनके यहाँ मौजूद है कि जिसमें वो गर्दिशें लेते हुए, मराहिल में से गुजारते हुए चीज को आगे ले जाते हैं, और उसके बाद खुद ही अपने यहाँ एक तसव्वुर देते हैं इस चीज का, कि फिर एक मकाम आ जाता है कि जहाँ उसके बाद गर्दिश नहीं होती। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईदु, और इस तरह से गर्दिश लेने में उनके यहाँ शफकत और मेहरबानी का, नरमी का और सहूलत का तसव्वुर भी होता है। ये ईद का लफ्ज यहीं से आया है, ये मादा वही है, ईद के माने भी है बार बार आने वाली, लेकिन बार बार वो आने वाली जिसमें शफकत और सहूलत की चीज भी होता है। गर्दिशें देता है शफकत और सहूलत के साथ, इस तरह से इस शय को तदरीजी मराहल तय कराता हुआ मार तक ले आता है, जो उसका नुकताए तकलील, उसका नुकताए तकलील है। और यही नुकताए तकलील है किसी शय का, कि जो उसकी तकलील कहलाता है। इन्ना हुई हुआ युद्ध हो व युईद हो, मैं कहा करता हूँ ना कि क्या करूँ, कुरान की ये आखिरी आयात, ये तो क्लासेस के जमातों के निसाब होने चाहिए। बिरादराने ये चीज, ये दो ही लफ्ज युक्ति और जहीद को, उसको मैं किस तरह से आपके चंद मिनटों के अंदर इसका इस्तेमाल करके बता दूं कि ये क्या कह गया है कुरान। ये तो एक कोर्स होना चाहिए हमारे यहाँ पर, शायद कभी किस्मत यावरी हमारी करे और ये कुरान आपके यहाँ का निसाब कहीं मुकर्र हो जाए, फिर देखिएगा कि जहन इंसानी कहाँ पहुँचता है। हो युक्ति हो व जहीद हो, और किस अंदाज से वो ये कुछ करता है। वहवल गफूर वदू, तबाहियों से हिफाजत करता हुआ दिया जाता है। कायनात की सियासत वजूद में रहना, खुद नस्ल इंसानी का इस तरह से आगे बढ़ के चले जाना, ये बता रहा है कि कितना हिफाजत का इंतजाम है। एक इंसान की जिंदगी के खिलाफ तबाहियों के जो सामान इस फजा में फिर रहे हैं, अगर कभी इंसान उस पर गौर करे तो महज हैरत रह जाए कि मैं जिंदा किस तरह से हूँ। जानने वाले इन हजरात से, डॉक्टर साहेबान से और दूसरे बायोलॉजी वाला से पूछिए, वो नजर आएगा कि एक एक सांस में आपके यहाँ इस कदर ये हलाकत आफरी जरासीम आप अंदर रह जाते हैं अपने, कि उससे बचना ही महाल नजर आता है। लेकिन उसके समान नफरत की कैफियत ये है कि उसने साथ ही ये कुछ इंतजाम कर रखा है कि हिफाजत होती चली जाती है। अल रफी, अब देखिए कि मब्दा से मईद जो है, टूरिज्म करता है, गर्दिशें देता हुआ आगे ले ला रहा है, और उसमें अल गफूर है, हिफाजत के सामान बहम पहुंचाता चला जाता है। एक तो सामान हिफाजत वो होती है जो जेल खाने का वार्डर कैदियों की हिफाजत करता है, उसमें भी एक हिफाजत होती है। एक हिफाजत होती है जो माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। अल गफूर के साथ कहा कि अल वदूद, इस किस्म की हिफाजत के जैसी माँ अपने बच्चे के छाती से चिंता ही हिफाजत करती है। क्या खुदा का तसव्वुर, मोहब्बत से हिफाजत करना, यूं हिफाजत किए चला आता है। ये वही कर सकता था कि जिसके हाथ में ये सारी कायनात का कंट्रोल हो, जुल अर्शिल मजीद, कायनात का मर्करी कंट्रोल उसके हाथ में, और फिर इस अर्श, इस तख्त जो है उसकी किबराई का, उस तख्त की सिफत ये है अल मजीद है। मजद बुनियादी तौर पे तो कहते हैं फरावानी और कसरत से किसी शय को दिए चले जाना, लेकिन अरबों के यहां सखावत सबसे बुलंद शर्ते इंसानियत, सबसे बड़ा शर्त या किसी के लिए सबसे बड़ी इज्जत या किस्म जो जिसमें हो सकती थी, उनके यहां सखावत, करीमी, मेहमान नवाजी ये होती है। इसलिए उनकी जुबान में ये जो लफ्ज का मजद कसरत से फरावानी से किसी शय को देना, यही लफ्ज फिर बुलंद तरीन शर्फ के मानों में इस्तेमाल होने लगे। मजीद है उस शर्फ का मालिक के जो किसी को कसरत से सहावत के बाद हासिल हो। मैंने तीन चार दफा लफ्ज शर्फ बोला कि दूसरा लफ्ज हमारे यहाँ है नहीं इसके लिए। अरबी में तो मजद और शर्फ दो अलग अल्फाज, क्या जुबान। मजद उनके यहाँ उस शर्फ को कहते हैं जो किसी की जाति जौहर की बना पर हो, और शर्फ उस शर्फ को कहते हैं जिसमें आबाई नस्बत भी पाई जाए, बाप दादा की वजह से जो शर्फ हो। कुरान में खुदा के लिए कहीं शरीफ का लफ्ज नहीं आया है, मजीद ही का लफ्ज आया है। ये हैं इसके मुरादे पास, क्या तर्जमा करेगा कोई इन अल्फाज। अरबों के यहां तो बड़ी चीज थी आबाई शर्फ, जिसे आप कहते हैं हसबो नसब के ऊपर उनका फखर, क्या कहने। कुरान ने आकर इस तसव्वुर को खत्म कर दिया। इज्जत और तकरीम जो है अकरमकुम इंदल्लाह है अस्काकुम, तुम्हारे जौहर जाति जो है वो वजह तकरीम है तुम्हारे लिए। और ये वजह है कि उसने मदद और मजीद के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, धरफ और शरीफ के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसमें फायदा पाया जाता है आबाओ अजदाद की वजह से खिलाफत का। शायद जिंदगी विफा कर दे कुरान के इन अल्फाज के मुतल्लिक कभी मैं आपको तशरीह से बयान करूं तो अजीब चीजें सामने आएंगी। जुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद, बहुत बड़ी चीज नजर आ रही है। जो चाहता है करता है, लेकिन इसके तो वही बात आ गई तो जो मैं इब्तदा से कह रहा था कि सारी तालीम इस महवर के गिर्द घूमती है कि यहाँ हर शय कानून के मुताबिक होती है। अब कहा जाएगा कि साहब यहाँ तो है फ़आल लिमा युरीद, जो चाहता है करता है, तो फिर तो कायदा और कानून कहाँ हुआ। कहीं है यफ़अल मा यशा, कहीं है फ़आल लिमा युरीद, ये क्या हुआ। हमारी समझने की जरा सी भूल है। ये कायनात के तीन गोशे हैं। सबसे पहला गोशा ये है कि जिसे कुरान खुदा का अमर या उसकी नसीहत कहता है, ये वो गोशा है कि जहां खुदा कानून बनाता है। कानून ये है कि आग हरारत ले, कानून ये है कि पानी प्यास बुझाएगा, कानून ये है कि सेंकिया हिलासत करेगा, कानून ये है कि शहद सफा बख्शेगा। सेंकिये के अंदर ये खासियत क्यों रखी गई, शहद को शीरीनी और नमक को नमकीनी क्यों दी गई, इस क्यों का जवाब कोई नहीं दे सकता। ये है वो मकाम जहां खुदा कानून बनाता है। फ़आल लिमा युरीद, वो अपने इरादे से कुछ करता है, उसकी कोई स्कीम है, उसका कोई प्लान है जिसके मुताबिक वो ये कुछ करता है। कानून जो बनाता है या बना दिए हैं उसने, وہ خالص اپنی مشیت، اپنے ارادے، اپنے پلان، اپنی سکیم کے مطابق اس نے بنائے ہیں، اس میں ہم میں سے کوئی دخل نہیں دے سکتا. وہ تو جب ہم وجود میں بھی نہیں آئے تھے اس زمانے کے بن چکے ہوئے، جب کوئی بھی نہیں تھا اس زمانے کے بن چکے ہوئے. وہ قانون بناتا ہے اپنے پلان کے مطابق. یہ ہے وہ دائرہ سے جس کے اندر تھا عالم لما یرید و یفعل ما یشاء، جس طرح سے وہ چاہتا ہے کرتا ہے اپنے ارادے کے مطابق. اس کے بعد یہ کائنات آتی ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون کو یہاں وہ نافذ کرتا ہے، اور یہاں آ کے وہ کہتا ہے وقت کرنا ہو تقدیر، اب ہر شے ہمارے قانون کے مطابق چلنے کے اوپر مجبور پیدا کر دیجیے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہم نے یہ جو قانون بنائے ہیں اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب یہاں یفعل ما یرید نہیں رہا، اب یہاں قانون کے مطابق ہر بات ہو. یہ ہے کائنات کا، خارجی کائنات کا دائرہ، جہاں اشیاء کائنات مجبور ہیں قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے. جو قانون خدا کا بنایا ہوا یہاں نافذ کیا جاتا ہے. اور معاف رکھیے، زبان سے کہ انسانوں کی یہ کہنا پڑتا ہے، جس خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ خدا خود یہاں اپنے آپ پہ جبر عائد کر لیتا ہے کہ میں اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا. کائنات کی ہر شے مجبور ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی. قانون مجبور ہے کہ اس میں تبدیلی خدا نہیں کرتا، اس نے خود کہہ دیا کہ میں تبدیلی اس کے اندر نہیں کروں گا. اور تیسرا گوشہ آتا ہے انسان کا کہ قانون تو اسی طرح سے غیر متبدل ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جی چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرے، جی چاہے اس کے خلاف ورزی کرے. جس طرح سے زندگی بسر کرے گا اس کے مطابق نتائج مرتب ہو جائیں گے. جہاں انسان مختار واقع ہوا ہے، قانون مجبور واقع ہوا ہے. یہ تین گوشے ہیں عزیزان من، اگر آپ ان تین گوشوں کو سامنے رکھ لیں گے تو قرآن کے لیے مقامات جو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں. کتاب کہیں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ یہ کرتا ہے اپنے اختیار ارادے سے کرتا ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے. دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے فعال لما یرید و یفعل ما یشاء، وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ کر رہا ہے. یہ بظاہر چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، وہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ قرآن کریم پہ بحیث کلی ہماری نگاہ نہیں ہوتی، ہم اس کے ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں. قرآن کے ان تین گوشوں کو سامنے رکھیے، آپ دیکھیے گا کوئی مقام آپ کو مشکل نہیں نظر آئے گا جو حل نہ ہو جائے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ مقام ہے کہ جس میں خدا اپنی مشیت ارادے اختیار کے ساتھ قانون بناتا ہے، اور اس کے بعد خود ہی اپنے مطلق قوت کے اوپر خود ہی پابندی عائد کر لیتا ہے کہ میں اب اس قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا. یہاں وہ فعال لما یرید نہیں رہتا. فعال لما یرید، اب یہ کچھ کہنے کے بعد پھر آ گیا انسانی دنیا کے ان انقلابوں کی طرف. حال اتا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود، ان پرانی قوموں کی داستان تمہارے سامنے آئی ہے. فرعون جیسے، قوم ثمود جیسے، کیا ہوا ان کا انجام؟ قوت اور طاقت تو انہوں نے بڑی جمع کر رکھی تھی. بلین کفروا فی تکذیب، لیکن انہوں نے ہمارے قانون کو جھٹلایا تھا. اس قانون کو جھٹلانے کے بعد کچھ لوار نتائج تو نہیں ملے. جب تک وہ جھٹلاتے تھے اور اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، واللہ من ورائہم محیط، خدا تو آگے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے تھا. وہ جا کہاں سکتے تھے، نکل کہاں سکتے تھے؟ خدا ان کو دائیں بائیں سے घेरे हुए था, इहाता किए हुए था उनका, तो खुदा का कानून मताफा पे अमल, ये कानून मकाफा पे अमल कहाँ है जो इंसानों की दुनिया में नाफिज होता है। खारजी कायनात में जितने कवानीन नाफिज हैं वो कहीं लिख के नहीं दिए उसमें, उन्हें इंसान अपने तजर्बे से, मुशाहदे से, मुतालिया से, अक्लो फिक्र की रूह से खुद दरियाफ्त कर सकता है। तुम डिस्कवर कर सकते हो लॉज ऑफ नेचर, वो मौजूद है, उससे कवर होता है हमारी जहालत का, उसे उठा दीजिए कानून चित्र सामने आ जाता है। लेकिन इंसानों की दुनिया के अंदर जो कावानाई नासिक है वो कहाँ है, उन्हें खुदा ने वही के जरिए से इंसानों को दिया है, इंसान दरियाफ्त कर सकता था इनको अपनी अक्ल फिक्र और मुशाहदे के बाद। लेकिन एक एक कानून को दरियाफ्त करने के अंदर आप देखते हैं सदियों लग जाती हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं एक जरा से कानून के इंतजार के लिए। ये खारजी कायनात के कानून को आप देखिए, एक कानून को दरियाफ्त करने के लिए आप देखते हैं हजार हर साल लग जाते हैं, और फिर इस दौरान में नाकाम तजारत से जो इंसान ठोकरें खाता है, जितने नुकसान इसको पहुंचते हैं, वो वकूल और वदूद ये नहीं चाहता था कि इंसान इस तरह से छोड़ दिया जाए कि इसको मालूम ही ना हो कि मेरी जिंदगी के लिए सही कानून कौन सा है। इंसान को ये कवानीन वही के जरिए दे दिए गए, और इसलिए कहा कि उन जो बड़े बड़े जुलूस थे उनको हम इहाता किए हुए थे, उनसे आगे और पीछे कौन सी चीज थी जो इहाता किए हुए थी, बल होगा कुरान मजीद। ये इहाता करने वाली तय हमारा जाब्ता एक कवानी कुरान को, इसका ये लिखी नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, लेकिन कुरान ने ये बताया है कि यही कुरान सोहफे उला के अंदर भी था। असूली तौर से ये कवानीन पहले दिन से इसी तरह से दिए गए थे, कवानीन की तो जजियात और डिटेल बदला करती हैं, कानून तो नहीं बदला करते। इसलिए कहा कि बल होगा कुरान मजीद, फिर वही बदल मजीद आया, बहुत बड़े शर्त और मजहब का ये हामिल रबता है कवानीन। लेकिन इसकी एक सिफत और बताई है, और बड़ी अहम सिफत है बरादरान अजीज, वो कानून, वो कानून है जो खारजी माहौल से मुतासर ना हो। अगर कानून को बाहर की चीजें मुतासर कर दें तो वो तो कानून ही नहीं रहता, थे इंसान के जज्बात को बहुत सी चीजें मुतासर करती हैं। कानून तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको कोई मुतासर ना कर सके, इसीलिए कहा कि ये जाब्ता कानून फी लौहिम महफूज, लौ हर चमकने वाली शय को कहते हैं, और इसके बाद जब इब्तदा हुई थी तहरीर की, उस जमाने में ये टेबलेट, ये मिट्टी की तख्तियां बना लेते थे और उनके ऊपर उभार उभार के नक्श बना दिया करते थे। जो तहरीर की इब्तदा हुई थी इसलिए उन तख्तियों या टेबलेट को लौ या उसकी जमा अल्लाह आतिया कहा करते थे। अब इसके माने हर वो शह है जिससे कुछ तहरीर किया जाए, बजट से कि तहरीर जो हो वो चमकदार हो, ये जरूरी है उसमें। तो कुरान फी लौहिन महफूज, दूसरी जगह फी किताब मकनून कहा है, यही जाब्ता इल्म खुदाबंदी में था तो महफूज था। और अब बरादरान अजीज, जब ये अपनी मुकम्मल शक्ल में इस किताब के अंदर आया है तो इस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ने ले रखा है, लिहाजा ये पहले भी लौहे महफूज में था और अब इंसानों को मिलने के बाद भी लौहे महफूज के अंदर है, महफूज है ये। और इसके साथ ही ये चीज कि अगर इस कुरान के अंदर इंसान खुद अपने जज्बात की अमेज़िश करके फिर इसके मफहूम देने शुरू कर दे तो अल्फाज तो इसके महफूज रह जाएंगे, कानून इसका महफूज नहीं नजर आएगा हमें। इसलिए कि हमने तो उसको अपने कालम में ढाल लिया। लिहाजा कुरान के कानून को समझने के लिए बुनियादी शर्त ये है कि इंसान अपने ख्यालात को पहले से कायम करके कुरान की तरफ न जाए। ये शिर्क है अजीजान मान। कुरान को खालिस कुरान से समझे और उसके बाद आप देखें कि ये किस तरह से अपने गैर मुतबद्दल कवानीन दिए चला जाता है। सूरह अल बरूज खत्म हुई। सूरह अत्तारिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही कानून मकाफात अहमद एक नए अंदाज से बात समझाई जा रही है। लॉज ऑफ नेचर हो, कुव्वत कुदरत फितरत की हो, इंसान की पोटेंशियलिटीज हो, इनकी कैफियत ये होती है कभी तो ये मुजमर होती हैं, कभी मसदूद हो जाती हैं, कभी ये लेटेंट होती हैं, कभी ये एक्चुअलाइज हो जाती है, कभी ये पोटेंशियल फॉर्म के अंदर होती हैं, किसी को मुजमर कहते हैं, कभी ये नमाया हो के सामने आ जाती हैं, इसको मसदूद कहते हैं। बात ये कहनी है कुरान में जिंदगी कानून अमाल के नतायज कभी मुजमर होते हैं छिपे हुए होते हैं और कभी ये नमूदार होकर सामने आ जाते हैं मशहूद होते हैं। ये नुक्ता है जो इस सूरत के अंदर कुरान ने बयान किया है। देखिए किस लतीफ अंदाज में बयान किया है। वस्माए वस्तारिक शहादत देती हैं सजा की ये बुलंदियां और उनमें आने वाला तारिक। क्यों तो तारिक बहुत बड़े चमकने वाले सितारे से मुतल्लिक कहते हैं लेकिन ये अरबी जुबान है। बुनियादी तौर पर ये तारिक का नाम नहीं था। इन्होंने तारिक नाम दिया था इस सितारे को। तो तारिक के बुनियादी माने हैं रात के वक्त आने वाला मुसाफिर। असल में मैं क्या करूं जी नहीं चाहता आगे बढ़ने के लिए जब इनके लफ्ज आ जाते हैं। ये तरह का जो लफ्ज है ना तो ये सांप इनके अंदर इसके बुनियादी मानों के अंदर होता है खटखटाना किसी चीज को इस तरह से करना। ये रास्ते जो भी तरीक इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर पाँव इस तरह से पड़ते हैं। ये खटखटाना जो है रात के वक्त जो मुसाफिर आता है वो आकर दरवाजे पर दस्तक देता है। इस दस्तक देने की बिना पर इनके यहाँ रात के वक्त आने वाले मेहमान या मुसाफिर को तारिक कहते थे। तो फिर खसूसियत से रात को आने वाला जो है उसके लिए ये तारिक हुआ। ये सितारा वैसे तो सितारे जिन रात ही को आते हैं नजर आता है लेकिन इनके यहाँ खासतौर पर कहा गया इस एतबार से कहा गया यही वो चीज है जो कुरान लेके आता है। वो कहता है कि ये रात के वक्त यूं चमकने वाला दिन के वक्त कहीं चला नहीं जाता। होता सिर्फ इतना है कि दिन के वक्त ये मुजमर होता है रात के वक्त मशहूर हो जाता। बात ये कहनी है कुरान ने कि हर अमल का नतीजा तो मौजूद रहता है तुम्हारे यहाँ। कानून भी हर वक्त मौजूद होता है। फर्क इतना पड़ता है कि कभी वो तुम्हारी निगाहों से ओझल होता है कभी वो तुम्हारी निगाहों के सामने चमक कर आ जाता है। जब चमक कर आता है तो तुम कहते हो कि वो आया सितारा। जब तुम्हारी निगाहों से ओझल होता है तो तुम कहते हो है नहीं वो तो होता है तुम नहीं देख सकते उसको। कहा तारिक क्या है माँ दरवाजा मत्ता है खुदा के अलावा तुम्हें अब कौन बताएंगे। यहाँ तारिक से क्या मुराद है वन नजमु साकिब यही चमकने वाला सितारा जिसे तुम यूं इस तरह से देखते हो कि चमक रहा है और तुम कहते हो कि ये तारिक है रात को कहीं से आता है। ये रात को कहीं से नहीं आता ये यही होता है उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आता। रात को तुम्हें ये नजर आ जाता है اور یہی کیفیت ہے ان کلو نفس لما علیہا حافظ، یوں ہی ہر انسان کے اعمال کے نتائج کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں چمک کے سامنے آ جاتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے بات کہاں لے آتا ہے، قرآن کہیں چلے نہیں جاتے، اور اگر تیری نگاہوں کے اندر بصارت کے ساتھ بصیرت بھی پیدا ہو جائے کہ جس طرح سے بعض نگاہیں جن کو بھی تارے دیکھ لیا کرتی ہیں، اس طرح سے تمہاری نگاہوں میں بصیرت پیدا ہو جائے تو جب ابھی یہ اعمال کے نتائج مشہور طور پہ سامنے نہیں آ گئے ہوتے، تم اس وقت بھی ان کو دیکھ لو اگر تمہاری نگاہوں میں بصیرت پیدا ہو جائے۔ پھر ایک مثال کی طرف چلا گیا، کہا جسے تم یہ انسان کہتے ہو یہ مشہور کہہ کر چلتا پھرتا ہوا، زندگی حرکت اور قوت اور توانائی کا ایک مجسمہ بہت مشہور شکل کے اندر تمہارے سامنے ہے، کیا یہ اسی طرح سے تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہی تھا شروع سے؟ حال ینظر الانسان مما خلق، ذرا اس پہ تو غور کیجیے کہ زندگی کن حالتوں کے اندر رہتی، وہی بات، کبھی یہ مزمر لیٹنٹ یا پوٹینشیل ہوتی ہے، پوٹینٹ ہوتی، کبھی یہی نمود میں آ جاتی ہے، مشہور میں آ جاتی ہے، ایکچولائز ہو کے تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے اس کی تاریخ کی مثال ہوئی ہے، پھر انسان کی اپنی زندگی کی مثال آ رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تم کیسے وجود میں آئے ہو؟ خود کا من ما ان داس کے ابتدا اس کی اس ایک قطرہ آب سے جو اسل کال رشتے نادر میں آتا ہے، کیا اس کے اندر تمہیں یہ انسان نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اس میں زندگی کی کوئی نمود تمہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے؟ عزیز عالمان، چھٹی صدی عیسوی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جرسومے کے اندر کے جو مائکروسکوپ کے علاوہ نگاہ تو نظر نہیں آتا، پورے کا پورا یہ انسان اس طرح سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک کاش کہ تمہیں وہ مائکروسکوپ کہیں سے مل جائے کہ جس میں تم اس چھپے ہوئے انسان کو پالو وہاں۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے اعمال جو ہیں ان کے نتائج کیسے محفوظ ہوتے ہیں جب یہ نہیں ہوتے ہمارے سامنے، تو کہاں ہوتے ہیں یہ سارے دھاندلیاں مچانے والے، یہ سب لوٹ میں جو مشغول اور مصروف ہوتے ہیں، وہ اسی لیے اس بھول میں رہتے ہیں کہ ان کو اپنے اعمال کے نتائج مشہور شکل میں سامنے نہیں آتے۔ وہ کہتا یہ ہے وقت وہ نگاہ پیدا کرو جو غیر محسوس میں محسوس کو دیکھ لے، دیکھو تو صحیح تمہاری زندگی کی ابتدا، اس میں کہیں تمہیں یہ انسان نظر آتا تھا؟ بات چلتے چلتے ایک کہہ گیا، یخرج من بین الصلد والترائب، یہ قطرہ آب، یہ نطفہ، اس میں الفاظ آتے ہیں، یہ نکلتا ہے ان مقام سے انسان کی تیس اور پتلیوں میں سے۔ میں سمجھتا ہوں 1300 برس نہیں یہ بات ان الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے کہ یہ جو ہے انسان کا، یہ انسان کا یہ مادہ تولید، یہ تو ایک مقام تولید ہے اس کا، وہاں سے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ اخراج ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ پسلیاں اور پیٹھ کے اندر سے یہ آتا ہے، سمجھ میں نہیں بات آ سکتی، لے لین کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ سکتی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم ڈاکٹر سید عبدالوحید صاحب کا، انہوں نے اس چیز کی تشریح کی، اور عجیب چیز ہے برادران عزیز کہ یہ آج آپ کی جو یہ تشریح ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو یہ جو ہم ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ اس کا اخراج، معاف رکھیے میں انہی الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ بیٹی اور بہنیں بھی ہیں، کہ یوں براہ راست اس کا اخراج ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط سا بات ہے، ये वहां से ट्रेवल करता हुआ एक रास्ते से आता है और उस रास्ते के अंदर ये पीठ और ये सीने की हड्डियों में से गुजरता हुआ ये आगे चल के आता है साहब। ये 1300 साल पेश तक ये चीज कही जा रही है और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगा कि उन्होंने इस दफा समाज अनायत हमारे आने वाली कन्वेंशन में अपना मौजू रखा है तखलीक इंसानी। इंसान पैदा किस तरह से ये होता है साइंस और कुरान की रोशनी। इस वक्त तक साइंस के जो इंकशाफात हैं उनको सामने रखते हुए कुरान की आयात को मुकाबले में लाते हुए और उन्होंने एहतमाम किया है कि ये मैजिक लैंटर्न से जो लाइट्स होती हैं उनके जरिए से उन्होंने तस्वीर बनाई हैं इसकी कि जिंदगी मुख्तलिफ मराहल में से किस तरह से गुजरी, उनमें उसने क्या तगैरात हुए और किस तरह से ये मुजमर से मशहूद हुई। ये इस दफा हमारी आने वाली कन्वेंशन में जो 10, 11, 12 नवंबर को यहाँ हो रही है उसमें डॉक्टर साहब मोहतरम के मौजू ये है लेक्चर का कि कुरान और साइंस की रोशनी में इंसानी तकलीफ उन स्लाइड के जरिए से बताएंगे। उसमें ये चीज भी आएगी कि ये चीज जो कुरान ने 1300 बरस पहले कही थी किस तरह आज के इंकशाफात जो इसकी तायीद कर रहे हैं कि ये किस तरह से ट्रेवल करता जा रहा है। इसे मजीद वजाहत इसकी तो वही फरमाएंगे और उस वक्त इंतजार कीजिए। लेकिन कुरान ने क्या कहा, ये कुरान तो इन आदमी की किताब नहीं है कि आपको ये डॉक्टरी पढ़ाने के लिए आया था या ये चीजें किसकी करना। वो तो एक बात अपनी दलील लाता चला आ रहा है, ज़िमनन ये बात दरमियान में आ जाती है। तो हो नहीं सकता कि एक खालिक कायनात ज़िमनन भी कोई बात कहे और तो वो जो मखलूक है उसके किसी गोशे के खिलाफ चली जाए, हो नहीं सकता। मशीन का बनाने वाला मशीन के मुताबिक ज़िमनन भी बात कहेगा तो वो सदाकत में मबनी होगी। ये बातें इस तरह से आ जाती हैं, कहना उसने क्या था। तो तुम्हें ये सुबह गुजर रहा है ना कि इंसान मर गया उसके बाद वो खत्म हुआ, फिर जिंदगी कैसी। उसने कहा कि जब ये इंसान इस शक्ल में नहीं था तो उस वक्त जिंदगी कहाँ थी। तुम्हारे हर मुमकिन जरिया इल्म से जो उस वक्त था तुम्हें जिंदगी कहीं नजर नहीं आती थी, जिंदगी मौजूद थी। देखा फिर वो किस तरह से मुजमर से मशहूरों के सामने आई। कहा जब ये जिस्म की ये मशीनरी डिस इंटीग्रेट हो जाएगी, इसमें इंतजार हो जाएगा तो होगा क्या, ये मशहूर फिर मुजमर हो जाएगी। बस इतनी ही चीज क्या अल्फाज है, इन्नहु अला रजिही लकादिर। जिसने पहले मुजमर को मशहूर बनाया था वो दोबारा मुजमर को मशहूर नहीं बना सकता। अल्लाह, लेकिन बात इतनी कि नहीं, वो कहना चाहता है कि दोबारा जिंदा हो जाओगे तो जी हो जाएंगे, फिर क्या होगा। बात तो वहां लाता है, सारा मरकजी नुक्ता कानून मसाफत इंसान के अमाल के नतायज का सामने आना लिए चला आ रहा है। तारक से इंसानी जिंदगी से मुजमर मशहूर होगा, मुजमर मशहूर होगा। बात कहनी है ये कि तुम्हारे ये नतायज जो इस वक्त मफाद परस्ती की पट्टियां तुम्हारी आंखों के ऊपर बंधी हुई हैं और तुम महसूस नहीं करते कि इस लूट के अंदर तुम्हारी तबाही किस तरह से मुजमर है, तुम देख नहीं रहे। कहा कि इसके बाद जिंदगी दोबारा मुजमर से मशहूर होगी, काहे के लिए जामत उबलत सराए। ये जो इस वक्त तुम इतना छुपाए बैठे हुए हो ये बेपर्दा सामने आ जाए। मकाफात अमल कहते ही थे उबलत सराए, जो आज असरार रमूज है, आज मस्तूर है, आज छुपा रखे हैं तुमने, खुद तुम्हारी भी भूल है कि अपनी नजरों से भी तुम्हारे लिए छुपे हुए। हालांकि उसने कहा यह है कि वो तो तुम्हारी गर्दन के अंदर लटक रहा है तुम्हारा अमालनामा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। वहां भी बड़ी खूबसूरती से बात कही है उसने, फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये लिपटा हुआ है, उस वक्त इसको खोल दिया जाएगा। यहाँ भी वो कही है बात की गाँव में तुम लक्षराए हो, जिस दिन ये तुम्हारे छुपाए हुए भेद बाहर कर दिए जाएंगे। अजीजा ने मन कि और के नजदीक जहन्नम का आजाद शायद कुछ और हो, मैं तो जब इससे गौर करता हूँ यकीन मानिए चीखे निकल जाती हैं। दोस्तों की महफिल में जिन लोगों से मामलात पड़ते हैं उनमें, घर बार वालों के यहाँ जिनसे हम मिलते हैं, उनकी नजरों में हम कितने मोहतबर बने हुए होते हैं, उनसे हमारा एतमाद जमाया हुआ होता है, हमारे ताल्लुकात दयानत पर मबनी है, खलूस पर, सदाकत से, हमारी दोस्ती बिल्कुल तुम्हारे साथ में साहब मुखलिसाना है, हम बड़े शरीफ वाकया हुए हैं, दयानतदार वाकया हुए हैं, कहीं ये कुछ नहीं करते, कोशिश सारी ये कि इन चीजों के ऊपर पर्दे पड़े रहे। सोचिए कि दोस्तों की महफिल में एक शख्स उनको बताता है कि मैं दयानतदारी से मुखलिस हूँ, तुम्हारी बहबूद मेरे सामने, तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात मैं नहीं करता, मेरे दिल में भी कोई चीज नहीं गुजरती, अंदर से मुनाफिक होता है, मालूम नहीं क्या क्या चीजें उस वक्त उनके मुताबिक सोच रहा होता है, वो सीने में झांक नहीं सकते, वो इसकी बातों का एतमाद करते हैं, करना पड़ता है, वो इसको शरीफ समझते हैं, इसको मुखलिस दोस्त समझते हैं, इसको वफादार शौहर समझते हैं, वफादार बीवी समझते हैं, ये सारी चीजें उम्र भर हम निभा सकते हैं इनको, लेकिन सोचिए कि यही दोस्तों का मजमा वहां सामने बैठा हुआ होगा और ये ख्यालात जो उस वक्त मेरे दिल में उनके ख्याल मुताबिक आ रहे थे, मुतल्लक आ रहे थे, ये उभर कर नुमाया हो के उनके सामने आ जाएंगे, उनकी निगाहों में क्या कैफियत होगी मेरी उस वक्त, इससे बड़ा आजाद जहन्नम कोई नहीं हो सकता। उम्र भर कोशिश ये हमारी रहती है कि किसी को ये बात मालूम ना होने पाए। यहाँ भी ऐसे हस्ताक्ष देखे गए हैं कि एक चीज हो गई है और उसके बाद जब देखा कि शायद रिपोर्ट हो गई और ये बात खुद आपके सामने आ जाएगी, खुदकुशी कर लेते हैं। ये आजाद इतना बड़ा होता है, लेकिन सोचिए कि वो मकाम जहाँ आप खुदकुशी भी नहीं कर सकते, वहां से भाग के भी नहीं कहीं जा सकते, वहां फिर पर्दा भी नहीं पड़ सकता, और कुरान ये कहता है कि ये सब वहां मौजूद होंगे, उनमें तुम बैठे ही होंगे। ये अपने तकद्दुस का दावा करने वाले, अपने आप को इतना मुखलिस दयानतदार सादिक और अमीन और शरीफ जाहिर करने वाले, दोस्तों के महज बातों के जरिए से एतमाद जमाने वाले, वो वक्त आ जाएगा कि ये सारी चीजें जितनी छुपाई हुई थी जौमा तुद कराओ फमानहू मिन कुव्वतिन वला नासिरिन। उस वक्त न तो इसकी अपनी कोई कुव्वत ऐसी होगी जो इसके ऊपर पर्दा डाल दे, ना कोई दोस्त ही ऐसा होगा जो इसके आगे पर्दा डाल दे। ये है अजीजान मन वो मशहूर नताए जिनके लिए तारिक से और इंसानी जिंदगी से हयात बादुल ममात से शहादतें ला रहा है कुरान ये बताने के लिए। और उसके बाद ये कहा, बात बड़ी एस्पेक्ट की हो गई थी, मुजर्रद हकीकत हो गई थी, जरा जहन जो था इसमें उलझ रहा था, फौरन इससे फिर वो ले आया है मासूस की तरफ, वक्त आए जातिर लगे। तुम कहते हो कि ये गर्दिश, ये बदलना, ये फिर से आना आना कैसे हुआ? कहता ये फजा की पहनाइयों में जो कुर्रे तैर रहे हैं ये उनकी गर्दिशें तो हैं जिससे कभी रात होती है कभी दिन होता है। ये गर्दिश ही तो है, समाजी गर्दिश। और उसके बाद है वन अर्ज जात सब बड़ी अजीम चीज है। तुम कहते हो कि जिस्म में जब इंतकार हो गया, जिस्म की ग्रेट हो गया, रेजा रेजा हो गया, थक गया, जिंदगी खत्म हो गई, कहा कि एक आज इस मिट्टी के नीचे एक इंच जरा नीचे धाम के देख सकते तुम्हें, तुम तो तुम्हें नजर आता कि इंतजार जो है वो मौत की दलील है या हजार के नाव की दलील हुआ करता है। दाने को खाक में जो तुमने मिलाया था, दो चार दिन के बाद जरा देखिए तो सही, वो फट चुका होता है। तुम्हारी दलील के मुताबिक वो खत्म हो चुका होता है। दो ही दिन के बाद उसमें से हयात ताजा की नमूद हो जाती है। जिस्म के इंतजार के बाद जिंदगी को नामुमकिन समझने वालों, कदम कदम के ऊपर जिंदगी तुम्हारे सामने उभर के आ रही है। कितनी अजीम बात है ये कही गई है आगे, इन्नहु लकौलुन फसल, ये जो हम कह रहे हैं एक फैसला कुन हकीकत है। वमा हुवा बिल हज़ल, मजाक नहीं कर रहे हम, अजीज़ान मन, हमने कभी इसको एक कौल फैसल समझा है? हर वो बात जिसे आज हम छिपा रहे हैं ये सामने आकर रहेगी। कोई इंसान जो इसको कौल फैसल समझ ले, एक हकी जितनी फैसला कुन हकीकत इसको समझ ले कि ये सोम कर रहना है, कभी छुपा ही नहीं सकता। जिसे यकीन हो जाए कि ये जो मैं जुर्म कमरे के अंदर कर रहा हूँ, ऐसा इंतजाम मौजूद है पुलिस का कि वो डिटेक्ट कर लेगी इसको, तो वो जरूरत ही नहीं करता। ये ईमान है बरादराने अजीब, कहा करते हैं कि ईमान का असर इंसान के अमाल के साथ क्या ताल्लुक पड़ता है। आप देखते हैं ईमान का कितना ताल्लुक है। आप ये ईमान पैदा कीजिए कि इन्नहु लकौलुन फसलुन, ये जो कहा गया है कि तुबल सरायर, ये जिंदगी की नमूद इसके बाद होगी, छुपे हुए भेद बाहर आके रहेंगे, एक दूसरे का सामना करना होगा। अगर ये कौड़े फसल है, ये फैसला कुन हकीकत है, इससे अगर ये ईमान है तो आप देखिए तो सही कि आपके अंदर कितनी बड़ी तब्दीली वाकया हो जाती है। ये वो ईमान था जिससे वो तब्दीली वाकया हुई थी। कमीशन पे कमीशन बैठाए जाते हैं कि जराइम में कमी कैसे वाकया हो, वो बताए जाते हैं, रिपोर्टें पेश होती हैं, जराइम बढ़ते चले जाते हैं। ये ईमान था जिसके बाद एक मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ भी हुई थी 1300 साल पहले। खलीफा अव्वल ने एक मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया था हज़रत उमर को, साल भर बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि साहब कोई काम मेरे सुपुर्द कीजिए, बेकार बैठा हुआ, साल भर में मुकदमा ही कोई नहीं आया। सवाल ही जुर्म का पैदा नहीं हो सकता जब ये ईमान हो कि जाओ मत कराओ, कोई नहीं सकता। उनका ईमान था कि इन्नहु लकौलुन फसलुन, हमारा ईमान क्या है? इब्राहिम ने कहा था, मैं समझता हूँ इसकी बाहर जरूरत नहीं थी, ये हमारे लिए था। वमा हुआ बिल हज़ल, हम इसको हज़ल समझ रहे हैं। हज़ल होता है जिसको सीरियसली ना ले कोई आदमी, क्यों ही लाइटली ले रहे, इसे तो यूँ ही लाइटली ले रहे। क्या है ईमान कुरान को मानने वालों का, इसके ऊपर मैं बाकियों को छोड़ता हूँ। किसी के मुतल्लिक जो दिल में भी ख्याल गुजरता है वो महसूस बनकर उसके सामने आ जाएगा और तुम सामने देख रहे होगे उस वक्त, है ईमान हमारा? क्या समझते हैं हम इसको कौले फसल या हम इसको हज़ल ही समझ रहे हैं? अब समझ में आया कि ये उसने क्यों साथ ही कह दिया था कि वमा हुआ बिल हज़ल, उसे मालूम था कि कुरान को हाथ में लेने वाले से ये कैफियत होगी कि इस कौल फसल को वो हज़ल समझ रहे होंगे। कहा कम वक्त ये ना हुआ बिल हज़ल इल्लाहु यतीबीना कैदम व अबीदो कैदा। अच्छा, ये जुर्म करने वाले क्या करते हैं? उसके बाद खुफिया तदबीरें करते हैं कि छुपा रहे। वह अकीदो कैदा, हमारा कानून मकाफात अहमद डिटेक्शन के अंदर लगा हुआ होता है, वो इनकी हर तदबीर को नाकारा बनाता चला जाता है। क्या अंदाज, यतीदूना कैदम व अबीदो कैदा, चल भाई, जितने जी चाहे कोशिशें कर ले इसको छुपाने के लिए। हमारा कानून है मकाफात अमल, मुकाबले में वो भी कोशिशें कर रहा है। कैद उस तदबीर को कहते हैं जो छुपी हुई, जुर्म का छुपाने वाला जो तदबीरें कर रहा होता है उसके अंदर भी वो राज होता है। उसी के मुकाबले में कहा कि हमारा कानून मकाफात भी जो कर रहा होता है वो भी बगैर तुम्हें नजर नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। डिटेक्टिव जो है वो जिस तरह से डिटेक्शन करता है, वो अगर पहले दिन मालूम पता बता दे कि मैं डिटेक्टिव हूँ, सीआईडी वाला मालूम हो जाए कि ये सीआईडी वाला है, बात नहीं बनती। क्या अंदाज है समझाने का बात, ये लोग कहेगा ठीक है तुम छुपाते चले जाओ, हम भी कुछ करते चले जाते हैं। फिर बात ये हुई कि फिर साहब अभी क्यों नहीं पकड़े जाते, समस्त भाई इतनी सी बात कि बीज जो जमीन में डाला है उसे कोंपल बनने में कुछ दिन लगने हैं, ये कुछ दिन लग रहे हैं साहब, ये मोहलत का वक्त है और मोहलत के वक्त में एक लफ्ज रोगैदा यहाँ आया है कि ये होता इतना नरमी से गुजरने वाला है कि उस आने वाले डिटेक्टिव की पांव की आहट भी सुनाई नहीं देती। ये मोहलत का वक्फा होता वाकई बड़ा तानाशाहियों की नरमी का होता है, इसमें गिरफ्त की कोई चीज नजर नहीं आती इंसान को। अगर आहटे पालेंगे किसी आने वाली तबाही की तो फिर भी ये इससे होशियार हो जाए, लेकिन वो इस तरह से तो प्यार नहीं होने देना चाहता, वो तो अंदर की तब्दीली से जुर्म के मुहर्रकात को रोकना चाहता है। इसलिए वो ये कहता है कि इस ईमान से ये रुक सकेंगे कि इन्नहु लकौलुन फसलुन, ये एक फैसला कुन हकीकत है, व मा हुवा बिलहज़्म, ये यही मजाक की बात नहीं है जो तुमसे हम कह रहे हैं। अभी जाने मन रोज बैठे हुए कम अज कम मुसलमान ही सही ये मस्तियां पढ़ते रहते हैं, हमारी हालत ये क्यों हो गई। वो भी किसी शिकायत को लिए हुए कह गया कि है आज क्यों जलील जो कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जराब में, और हम फिर कमीशन भी बैठाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि बात तो इतनी सी है जो ये कह गया है कि ये जो है कि इन्नहु लकौलुन फसलुन, इस बात के ऊपर की मान नहीं, और जब तक ये नहीं आती थी उस वक्त तक कभी ना हमारी हालत में तब्दीली हो सकती है न माशरे के जराइम खत्म हो सकती है। माशरे के जराइम तो खैर वो है जो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, हम अपनी जात के खिलाफ जो जराइम करते हैं जो यहाँ की किसी पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आ सकते, वो किस तरह से आप बंद कर सकते हैं? वो तो बंद इसी सूरत में होंगे कि आपका इस पर ईमान हो ये कि यौमा तुबल सराय, भेद खुल कर रहेगा, वह माँ हो वह इन्ना हूँ लकौल फसल, ये फैसला तुम हकीकत है, वह माँ हो बिल हजल, मजाक की बात नहीं है। हजीबान मन सूरह अतारक क्यासी सूरत आज खत्म हुई, आइंदा हम سورہ آل اعلی 87 سورت چلیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔